दौला लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेज, ओम नमः सिद्धेज, ओम नमः सिद्धे सिद्धमणन्तमणिन्द्रिय मणुव मम पत्थसौखमणवच्छम् केवलपहोहणिज्य दुन्नयतिमिरञ्जिनम् नमः। यह धौला नामक टीका जो आचार्य वीरसेन स्वामी ने रची है, मूल ग्रंथ है षटखंडागम, जिसकी रचना भगवान पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य ने की हुई है। उसके द्वितीय बार के वाचन में, प्रवचन में अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 29 पर। यहाँ अपनी बात मंगल संबंधी हम निक्षेप लगा रहे थे, नाम स्थापना और द्रव्य निक्षेप की बात हो रही थी। द्रव्य निक्षेप के हमने बहुत सारे भेद देखे, आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप। नो आगम में ज्ञायक शरीर, भव्य या भावी और तद्व्यतिरिक्त। फिर ज्ञायक शरीर के तीन भेद, भूत वर्तमान भविष्य वाले, भूत के चुतचावित और त्यक्त, और त्यक्त में भी प्रायोपगमन, इंगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान, ये तीन प्रकार उसमें देखे थे हमने। भक्त प्रत्याख्यान में भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद देखे थे। भव्य की बात देखी, यानी उस जीव को जो भविष्य में मंगल पर्याय रूप से परिणमित होने वाले जीव को भव्य या भावी तद भावी बताया था, भावी द्रव्य नो आगम द्रव्य निक्षेप बताया था, या द्रव्य मंगल कहेंगे हम। तद व्यतिरिक्त की बात हो रही थी, तद व्यतिरिक्त में दो भेद, कर्म और नो कर्म। कर्म में तीर्थंकर प्रकृति जो है उसको यहाँ कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल कहा। अब जो नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल है, उसमें दो भेद किए, लौकिक और अलौकिक। लौकिक में सिद्धार्थ है ने श्वेत सरसों, जल से भरा हुआ कलश, वंदनमाला, छत्र, श्वेत वर्ण, दर्पण आदि को अचित्त मंगल कहा था, क्योंकि उसके तीन भेद है लौकिक के, अचित्त, सचित्त और मिश्र। अचित्त में ये विविध वस्तुएं देखी, सचित्त में बाल कन्या और उत्तम जाति का घोड़ा है, और मिश्र में अलंकार युक्त कन्या को ले लिया। लोकोत्तर मंगल की बात उसके बाद देखी थी, उसमें भी सचित्त, अचित्त और मिश्र के भेद से तीन प्रकार है, यानी अरिहंत आदि का जो जीव द्रव्य है, वो अनादि अनंत जो जीव द्रव्य है, उसको यहाँ लेना है, क्योंकि वर्तमान परिणत वाली उस पर्याय की बात करना है नहीं, और नहीं वर्तमान परिणत को लेना है, क्योंकि वो तो भाव निक्षेप में आ जाता है, इसलिए यहाँ उनका द्रव्य लेना है, जीव द्रव्य। हाँ, वो पूरा ही अनादि अनंत द्रव्य लेना, तो उसको हम लोकोत्तर नो आगम द्रव्य मंगल कहेंगे, यानी लोकोत्तर तद व्यतिरिक्त, बीच में डालना पड़ेगा ना, वो भी नो कर्म भी शब्द डालना पड़ेगा बीच में। लोकोत्तर नो कर्म तद व्यतिरिक्त, इतना पूरा
लोकोत्तर
तद व्यतिरिक्त,
इन्होंने तो उल्टा उल्टा लिखा है।
नहीं नहीं नहीं, वो बराबर है, उन्होंने तद व्यतिरिक्त डाला नहीं उसमें, उसमें तद व्यतिरिक्त नो कर्म तद व्यतिरिक्त चाहिए, लोकोत्तर नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम। अच्छा, उन्होंने तद व्यतिरिक्त बाद में डाला है, वो ऐसा चाहिए होता। ऊपर क्या लिखा है, वो पूरा लिखा ही नहीं, इन्होंने लिखा है ऐसा, उसका पूरा नाम है सचित्त लोकोत्तर। नो आगम के बदले नो कर्म, तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल। सेकंड लाइन में नो आगम लिखा है ना, तो लोकोत्तर के बाद नो कर्म लिखना,
बाद में
तद व्यतिरिक्त लिखना, बाद में नो आगम लिखना। देखो ये लोकोत्तर मंगल भी हमने तीन प्रकार के देखे थे, उसको ऐसा समझना सचित्त लोकोत्तर, फिर नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल। क्योंकि हम नीचे से ऊपर के भेदों तक जा रहे हैं, फिर से दोबारा बताती हूँ।
देखो जीव द्रव्य सचित्त लोकोत्तर नो कर्म तद व्यतिरिक्त,
हाँ नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल। नो कर्म फिर तद व्यतिरिक्त फिर नो आगम द्रव्य मंगल, ये उसका सही नाम होगा। हाँ यह पेज नंबर है 29, हाँ 29 नंबर। ये कल हमने सब भेद देखे थे लौकिक और लोकोत्तर के, लोकोत्तर के सचित्त अचित्त और मिश्र भेद बताए थे। उसमें से सचित्त को लिया अर्यंत भगवान का अनादि अनंत द्रव्य, अचित्त में लिया कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालय। प्रतिमाओं को नहीं लेना क्योंकि उनमें तो स्थापना निक्षेप हो जाता है ना, स्थापना मंगल में आते हैं। उसके बाद हमने ये भी प्रश्नोत्तर देखे कि उसमें प्रतिमाओं ने स्थापना व्यवहार कैसे होता है अकृत्रिम में, उसकी बात अपनी कल हुई थी। अब आज का विषय यहाँ नीचे से दूसरी लाइन 29 पेज पर, वहां से अपनी बात चलेगी। अभी तक हमने नाम मंगल, स्थापना मंगल और द्रव्य मंगल देखे, द्रव्य मंगल के बहुत सारे भेद देखे। अब क्षेत्र मंगल की बात चालू होती है यहाँ से। गुण परिणत आसन क्षेत्र, जहां पर योगासन वीरासन इत्यादि अनेक आसनों से तदनुकूल अनेक प्रकार के योगाभ्यास जितेंद्रियता आदि गुण प्राप्त किए हो, ऐसा क्षेत्र उसको गुण परिणत आसन क्षेत्र, यानी जिस क्षेत्र में विविध उसने जो कुछ अभ्यास किया है जितेंद्रियता योगाभ्यास आदि, ऐसे क्षेत्र को बताया है गुण परिणत आसन क्षेत्र। परिनिष्क्रमण क्षेत्र यानी तीर्थंकरों का जो दीक्षा क्षेत्र होता है, दीक्षा कल्याण जहाँ वो दीक्षा लेते हैं, उसको परिनिष्क्रमण क्षेत्र कहते हैं। केवल ज्ञान उत्पत्ति क्षेत्र, जहाँ उनके केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, उसको केवल ज्ञान उत्पत्ति क्षेत्र कहते हैं। और निर्वाण क्षेत्र आदि को क्षेत्र मंगल कहते हैं। उसके उदाहरण अभी यहां बताएंगे, आगे उदाहरण लेकर इसका खुलासा किया जाता है। 30 पृष्ठ पर आए हम। ऊर्जयंत, ये गिरनार का दूसरा नाम है ऊर्जयंत। चंपापुर और पावापुर नगर आदि क्षेत्र मंगल है, ये तो मालूम ही। उज्जैन पर कौन निर्वाण गए, तो नेमिनाथ भगवान। चंपापुर में वासुपूज्य और पावापुर में महावीर, ये उनका निर्वाण क्षेत्र है। ऐसे सम्मे शिखर तो है ही शाश्वत, या नेमिनाथ वासुपूज्य और महावीर, अथवा यानी ये कहाँ से निर्वाण गए वहाँ उसको क्षेत्र मंगल कहा, अथवा 3.5 हाथ से लेकर 525 धनुष तक के शरीर में स्थित और केवल ज्ञानादि से व्याप्त आकाश प्रदेशों को क्षेत्र मंगल कहते हैं। क्योंकि जो जीव केवल ज्ञान से युक्त है और उसकी अवगाहना 3.5 हाथ से लेकर 525 धनुष तक की जो अलग अलग जीवों की अलग अलग होती है और उन्होंने जितने आकाश प्रदेशों को रोका हुआ है उसको क्षेत्र मंगल कहता अथवा लोक प्रमाण आत्म प्रदेशों से लोकपूर्ण समुद्घात दशा में व्याप्त किए गए समस्त लोक के प्रदेशों को क्षेत्र मंगल कहते हैं। ये शब्द समुद्घात है। अभी इसमें ध और घ का डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। यानी केवली भगवान जब समुद्घात करते हैं, ये तो पता है ना, जब 13वें गुणस्थान के अंत में होता है और सभी कर्मों की स्थिति समान की जाती है, तो वो लोकपूर्ण अवस्था में पूरे लोक के प्रदेश केवली भगवान के आत्म प्रदेशों से व्याप्त होते हैं, इसलिए पूरे समस्त लोक के प्रदेशों को क्षेत्र मंगल कहा है। अब काल मंगल की बात करेंगे। क्षेत्र मंगल की तो इतनी बात है, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र देखा। अब काल मंगल, जिस काल में जीव केवल ज्ञान आदि अवस्थाओं को प्राप्त होता है, उसे पाप रूपी मल का गलाने वाला होने के कारण काल मंगल कहते हैं। उदाहरणार्थ दीक्षा कल्याणक केवल ज्ञान की उत्पत्ति और निर्वाण प्राप्ति के दिवस आदि काल मंगल समझना चाहिए। यह अन्य कल्याणक नहीं लिए, दीक्षा और केवल ज्ञान और निर्वाण लिया। जिन महिमा संबंधी काल को भी काल मंगल कहते हैं, जैसे अष्टानिक पर्व आदि। ऊपर यथा नंदीश्वर दिवस आदि कहा। नंदीश्वर दिवस यानी अष्टानिक पर्व। ये अष्टानिक होता है क्या अष्टानिक होता है? ओ चाहिए ना, अष्टानिक ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब ये हो गया काल मंगल। अब भाव मंगल की बात चलेगी। वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं। द्रव्य मंगल में हमने भूत भविष्य की भी पर्याय ली, उसमें उसी बहुत अलग अलग, यानी उसको द्रव्य केवल लिया था और यहाँ वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को ही लेना है। वह आगम भाव मंगल और नो आगम भाव मंगल के भेद से दो प्रकार का है। आगम सिद्धांत को कहते हैं, इसलिए जो मंगल विषयक शास्त्र का ज्ञाता होते हुए वर्तमान में उसमें उपयुक्त है, उसे आगम भाव मंगल कहते हैं। आगम द्रव्य मंगल में हमने वो उसका ज्ञाता परंतु वर्तमान में उपयोग रहित वाला लिया था, उसमें उपयोग नहीं है इसका। अब इसका उपयोग भी वर्तमान में उसी मंगल विषयक शास्त्र में ही है, इसलिए उसको, उस जीव को ही आगम भाव मंगल कहते हैं। नो आगम भाव मंगल उपयुक्त और तत्परिणत के भेद से दो प्रकार का है। यानी जो आगम के बिना ही मंगल के अर्थ में उपयुक्त है, उसे उपयुक्त नो आगम भाव मंगल कहते हैं। और मंगल रूप पर्याय अर्थात जिनेन्द्र देव आदि की वंदना भाव स्तुति आदि में परिणत जीव को तत्परिणत नो आगम भाव मंगल कहते हैं। यानी जिनेन्द्र की वंदना में वो परिणत है अभी शंका। इन निक्षेपों में से यहां यानी इस ग्रंथावतार रूप प्रकरण में किस निक्षेप से प्रयोजन है? इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें बताई है परंतु यहां मंगल किया जाता है ग्रंथ की शुरुआत में, इसको ग्रंथावतार कहा, तो यहां कौन से निक्षेप से प्रयोजन है? कहते यहां पर तत्परिणत नो आगम भाव मंगल रूप निक्षेप से प्रयोजन है, क्योंकि यहाँ मंगल कर रहे हैं ना जिनेन्द्र भगवान पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तत्परिणत नो आगम भाव मंगल की बात है। फिर शंका, यदि यहाँ तत्परिणत नो आगम भाव मंगल रूप निक्षेप से प्रयोजन है तो अन्य निक्षेपों के कथन करने से यहाँ क्या प्रयोजन है, अर्थात प्रयोजन के बिना उनका यहाँ कथन नहीं करना चाहिए था, उसका समाधान। जहाँ जीवादि पदार्थों के विषय में बहुत जाने वहाँ पर नियम से सभी निक्षेपों के द्वारा उन पदार्थों का विचार करना चाहिए, यानी जहाँ जिस विषय को हम जा रहे हैं जीवादि पदार्थों के विषयों में, हम तत्व की बात होगी, पदार्थ होगी, अन्य भी जो कोई है, तो ये निक्षेपों के द्वारा उन पदार्थों का पहले में पहले विचार करना चाहिए। और जहाँ पर बहुत न जाने तो वहाँ पर चार निक्षेप अवश्य करना चाहिए, नियम से सभी ने 6 निक्षेप लगाना है। अब कहते ज़्यादा नहीं जाने तो भी 4 निक्षेप तो जरूर लगाना ही चाहिए। ये 4 मालूम है ना, नाम स्थापना द्रव्य और भाव, ऊपर का 14 नंबर गाथा पढ़ना रहेगी। जत्थ बहुम जानी चा अवरमिदं तत्तनिक्खिवे नियमा, जत्थ बहुम न जानदि चौठयम् निक्खिवे तत्थ। ये नाम स्थापना द्रव्य भाव
मतलब क्षेत्र
जत्थय जम जाने जा निखेवम निखिवे निरवशेषम जत्थव्य न जाने जा चौकवम निखिवे तत्थ। यानी चार, कम से कम 4 निक्षेप तो लगाना ही चाहिए, ये कहना चाहिए, क्योंकि हमने देखा ना आप युक्ति से जानना है ने प्रमाण ने निक्षेप से जानना है, यानी वस्तु का विचार करना है तो उसमें ये 4 निक्षेप लगाना चाहिए, क्योंकि जिस वस्तु का विचार करना है उसका नाम भी तो बताना पड़ेगा, तो नाम उसमें आ ही गया। इस वचन के अनुसार यहाँ पर निक्षेपों का कथन किया गया। पूर्वोक्त कथन के मान लेने पर भी किस प्रयोजन को लेकर निक्षेपों का कथन किया जाता है, इस प्रकार की शंका करने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। यानी निक्षेपों का कथन ही क्यों करना, उसका प्रयोजन क्या है, उसके लिए श्रोता के 3 प्रकार बता रहे हैं। पहला है अव्युत्पन्न, अर्थात वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ। दूसरा है संपूर्ण विवक्षित पदार्थ को जानने वाला। और तीसरा है एक देश विवक्षित पदार्थ को जानने वाला। मैंने पहला अव्युत्पन्न है ना, इन्हें उसने कुछ विचार ही नहीं उसके बारे में, निर्णय ही नहीं, ऐसा जीव लिया है। हाँ, अव्युत्पन्न होने के कारण विवक्षित पद के अर्थ को कुछ भी नहीं समझता, यानी सुन रहा है परंतु उसका कुछ उसको भाव नहीं समझ रहा, अनध्यवसाय जिसको कहा। देखो यहाँ हमने पहले कर्मकांड पूर्वार्ध के 103 पेज में वहाँ से विचार किया था, यहाँ लिख के रखा है कि गमन करते हुए पुरुष को तृण का स्पर्श हुआ, वहाँ तृण का कुछ विचार नहीं, वैसे सुनता है परंतु कुछ विचार नहीं, यानी यथार्थ प्रतीति की अप्राप्ति, सुनकर भी उसका सही अर्थ भाषित नहीं होना, उसको यहाँ अव्युत्पन्न कहा। तो इनमें से पहला श्रोता अव्युत्पन्न होने के कारण विवक्षित पद के अर्थ को कुछ भी नहीं समझता। विवक्षित पद है ना, वो विवक्ष जो शब्द है उनके अर्थ समझ में नहीं आते उसके। दूसरा, यहाँ पर इस पद का कौन सा अर्थ अधिकृत है, इस प्रकार विवक्षित पद के अर्थ में संदेह करता है। यानी अपने बुद्धि से अर्थ लगाता है। जैसे खेत में पुरस्कार देखा, वो मैंने लिखे रखा है, वो पढ़ रही हूँ, तो संदेह हुआ कि माटी का स्थान है कि पुरुष है। वैसे यह श्रोता सामान्य अर्थ जानता है, विशेष भाव नहीं समझता, यानी इसलिए संशय या विपर्य बना रहता उसका, संदेह है ना उसका। अथवा प्रकरण प्राप्त अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को ग्रहण करके विपरीत समझता है, ये विपर्य है। पहला अनध्यवसाय था और व्युत्पन्न में, दूसरा संशय है और यहाँ विपरीत समझता है, तो विपर्य है। दूसरी जाति के श्रोता के समान तीसरी जाति का श्रोता भी प्रकृत पद के अर्थ में या तो संदेह करता है अथवा विपरीत निश्चय कर लेता है। तीन जाति के बताए उन्होंने, एक तो कुछ नहीं समझता है, अनध्यवसाय है, या वो उसके संशय है, या उसके विपर्य है।
वो तीसरा है, वो एक जात, एक देश।
हाँ, इनमें से यदि अव्युत्पन्न श्रोता पर्याय का अर्थी अर्थात पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा वस्तु की किसी विवक्षित पर्याय को जानना चाहता है, तो उस अव्युत्पन्न श्रोता को प्रकृत विषय ने विवक्षित विषय जो अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, यानी जो अंडर कंसिडरेशन है उसको हम विवक्षित कहेंगे। तो प्रकृत विषय की व्युत्पत्ति के द्वारा, उसकी व्युत्पत्ति करना यानी उसके विस्तार से उसका सही ज्ञान कराना। फिर कहते अव्युत्पन्न श्रोता पर्याय का अर्थी यानी जानना चाहता है, पर्याय को जानना चाहता है, यानी पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा वस्तु की किसी विवक्षित पर्याय को जानना चाहता है, तो उस अव्युत्पन्न श्रोता को प्रकृत विषय की व्युत्पत्ति के द्वारा अप्रकृत विषय के निराकरण करने के लिए निक्षेप का कथन करना चाहिए। यानी विवक्षित वस्तु का उसको निर्णय होना चाहिए। किसके द्वारा? अभी हम जो निक्षेप लगा रहे हैं उसके द्वारा। और यदि वह अव्युत्पन्न श्रोता द्रव्यार्थिक है अर्थात सामान्य रूप से किसी वस्तु का स्वरूप जानना चाहता है, तो भी निक्षेपों के द्वारा प्रकृत पदार्थ के निरूपण करने के लिए संपूर्ण निक्षेप कहे जाते हैं, क्योंकि व्यतिरेक धर्म के निर्णय के बिना विधि का निर्णय नहीं हो सकता। व्यतिरेक धर्म यानी विशेष धर्म, तो व्यतिरेक धर्म के निर्णय बिना, विशेष धर्मों के निर्णय के बिना विधि का यानी सामान्य निर्णय नहीं हो सकता। यानी विशेष बिना सामान्य का निर्णय नहीं हो सकता। सामान्य का निर्णय करना है तो उसकी विशेषताओं को जानना पड़ेगा। दूसरी और तीसरी जाति के श्रोताओं को यदि संदेह हो, तो उनके संदेह को दूर करने के लिए संपूर्ण निक्षेपों का कथन किया जाता है। ये संदेह वाला लिया। और यदि उन्हें विपरीत ज्ञान हो गया हो, तो प्रकृत अर्थात विवक्षित वस्तु के निर्णय के लिए संपूर्ण निक्षेपों का कथन किया जाता है। यानी निक्षेपों का कथन क्यों करना है, तो उन्होंने तीन प्रकार के श्रोता बताए, उसमें से एक अव्युत्पन्न अर्थ वाला है, तो उसमें अनध्यवसाय उसके हो सकता है, किसी के संशय है, किसी के विपरीत यानी विपर्य है, तो उसको दूर करने के लिए, क्योंकि विशेष धर्मों का निर्णय करके सामान्य वस्तु का निर्णय उसको कराना है, इसलिए सभी निक्षेपों का कथन किया जाता है। इसके लिए 15 नंबर की गाथा ऊपर लिखी है, अवगय निवारणम पयदस्य परुवणानि निमित्तं च संशय विनाशनार्थं तच्छत्तधारणार्थं च। अप्रकृत विषय के निवारण करने के लिए, प्रकृत विषय यानी यथार्थ और अप्रकृत यानी अयथार्थ, यानी अयथार्थ का निवारण करने के लिए। दूसरी बात, प्रकृत विषय के प्ररूपण करने के लिए, प्रकृत यानी जो अयथार्थ है, जो विवक्षित है। तीसरी बात, संशय का विनाश करने के लिए। और चौथी, तच्छत्थ यानी तत्वार्थ का निर्णय करने के लिए निक्षेपों का कथन करना चाहिए। चार बातें कौन सी देखी हमने? अप्रकृत विषय का निवारण, प्रकृत विषय का प्ररूपण, संशय का विनाश और तत्वार्थ का निश्चय।
यहाँ संशय का विनाश होने के लिए करवाया था,
करने के लिए
आपने, करने के लिए जो लिखा है उसकी जगह होने के लिए अच्छा आपने बताया था।
उस बार करने लिखा था,
कर की जगह हो कर दिए मैंने,
आपने उसमें करेक्शन किया है।
हाँ,
निक्षेपों का कथन करना चाहिए, कथन करना की बात है ना, विनाश अनर्थ।
वो कथन करने का चाहिए उसके लिए नहीं, सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन में संशय का लिखा है, विनाश करने के लिए लिखा है।
नीचे कुछ है क्या देखते मैं, ननु निक्षेप अभावे प्रमाण अप्रकृत निराकरण तत्वात् प्रकृत प्ररूपणार्थत्वाच्च निक्षेपस्य। ऐसा क्यों कहा मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे में तो मैंने कुछ करेक्शन नहीं किया। क्योंकि बाकी सब करने के लिए है ना, पता नहीं।
चलो जाने, हम निकाल देते हैं।
अथवा संभव है कि निक्षेपों को छोड़कर वर्णन किया गया सिद्धांत वक्ता और श्रोता दोनों को कुमार्ग में ले जावे। ओहो, इसलिए भी निक्षेपों का कथन करना चाहिए। यानी निक्षेप नहीं कहेंगे तो श्रोताओं का मन संशयादिक से रहित नहीं होगा, ये उसके। अभी यहाँ तक निक्षेप का विषय शुरू समाप्त होता है। हमने देखा था मंगल आदि जो 6 अधिकार है, उस एक एक में पहले धातु बताया जाता है ना, वही उसी की बात चल रही है ना। मेरे ख्याल से 10 पेज से चली थी, कहाँ से,
दहा पेज।
हाँ, धातु बताया, फिर निक्षेप, नए, अभी एकार्थ की बात यहाँ बता रहे हैं। यानी उसके मंगल के लिए और कौन कौन से पर्यायवाची नाम है, मंगल अर्थ में और कौन से शब्द आते हैं, उसकी बात है यहाँ पर। जैसे अब मंगल के एकार्थवाचक नाम कहते हैं, मंगल, पुण्य, पूत, पुण्य है वो ना, आप में ऊपर होगा ना कुछ,
इधर भी पुण्य ही लिखा है,
मंगलम पुण्यम, पुण्य है वो, मंगल, पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, शुभ, कल्याण, भद्र और सौख्य इत्यादि मंगल के पर्यायवाची नाम है। हम पुनीत भी कहते ना पवित्र के लिए, पुनीत पूत यानी पुनीत। मंगल पुण्य पूत पवित्र प्रशस्त शिव शुभ कल्याण भद्र और सौख्य। शंका, यहाँ पर मंगल के एकांतवाचक अनेक नामों का प्ररूपण किस लिए किया गया है? समाधान, क्योंकि मंगल रूप अर्थ अनेक शब्दों का वाच्य है, यानी मंगल जो है उसको बताने वाले अनेक शब्द है, उन शब्दों के द्वारा भी मंगल नाम का अर्थ घटित होता है। अर्थात अनेक पर्यायवाची नामों के द्वारा मंगल रूप अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए प्राचीन आचार्यों ने अनेक शास्त्रों में अनेक अर्थात भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा मंगल रूप अर्थ का कथन किया है। उसका मति भ्रम के बिना शिष्यों को सरलता पूर्वक ज्ञान हो जावे, इसलिए यहाँ पर मंगल के एकार्थवाची नाम कहे हैं। मैंने कोई मति भ्रम न होवे, उनका कोई भ्रम न होवे, इसलिए ये उनके एकार्थवाची शब्द अन्यत्र भी बताए गए हैं। अथवा यदि शिष्य एक शब्द से प्रकृत विषय को नहीं समझ पावे तो दूसरे शब्दों के द्वारा उसे ज्ञान करा देना चाहिए। इस वचन के अनुसार भी यहाँ पर मंगल रूप अर्थ के पर्यायवाची अनेक नाम कहे गए हैं। तो ये हो गया अभी 10 पेज पर जो हम देख रहे थे। पहले हमने धातु देखा, फिर निक्षेप, फिर नय, फिर एकार्थवाचक। अब उनको बताना है निरुक्ति। निरुक्ति यानी व्युत्पत्ति जन्य अर्थ, यानी वो शब्द जैसे तैयार हुआ उसको अर्थ कैसे उसमें से निकालना, उसको कहते हैं निरुक्ति। अब मंगल की निरुक्ति कहते हैं, यानी व्युत्पत्ति जन्य अर्थ कहते हैं। जो मल का गालन करे, विनाश करे, घात करे, दहन करे, नाश करे, शोधन करे, विध्वंस करे, उसे मंगल कहते हैं। मलम गालयति ऊपर है, देखो संस्कृत में ये शब्द कैसे तैयार हुआ, तो मलम गालयति, तो गालयति मल को गालन करता है, नहीं क्या करता है उसको गालन करता है, नाश करता है, घात करता है, दहन करता है, शोधन करता है, वो मंगल है। अब ये मल क्या है, तो द्रव्य मल और भाव मल के भेद से वह मल दो प्रकार का है। ये सब उसके लिए उन्होंने ये जो लिखा है ना उसके लिए सारे फुट नोट में सब रेफरेंसेस बताए गए। अभी जो दो प्रकार का बता रहे हैं दो ने, वो नीचे 6 नंबर पर लिखा है। दौन्य वियप्पा होती हूँ मलस्य इमम दव भाव भे ही, यानी द्रव्य और भाव के भेद से ये मल भी दो प्रकार के होते हैं। अब बाद में वो द्रव्य मल भी दो प्रकार के वो बताएंगे। अभी द्रव्य मल भी दो प्रकार का है, बाह्य द्रव्यमल और अभ्यंतर द्रव्यमल। इनमें से पसीना, धूली और मल आदि बाह्य द्रव्यमल है, और सांद्र ने घन थिक और कठिन रूप से जीव के प्रदेशों से बंधे हुए प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश इन भेदों में विभक्त ऐसे ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के कर्म अभ्यंतर द्रव्यमल है। वो द्रव्यमल के 2 भेद है। वैसे हम द्रव्यमल तो कर्मों को कहते हैं, यहाँ पर बाह्य जो शरीर के मल है उसको भी यहाँ ले लिए। अज्ञान और अदर्शन आदि परिणामों को भावमल कहते हैं। अथवा कहके मल और भी अन्य प्रकार के बता रहे हैं। अर्थ अभिधान ने शब्द और प्रत्यय ने ज्ञान के भेद से मल 3 प्रकार का है। अर्थ मल तो अभी पहले कहे आए हैं, अर्थात जो पहले बाह्य द्रव्यमल, अभ्यंतर द्रव्यमल और भावमल कहा गया है उसे ही अर्थमल समझना चाहिए। यानी अर्थमल के तीन भेद किए ना, द्रव्यमल और भावमल। द्रव्यमल में बाह्य द्रव्यमल और अभ्यंतर द्रव्यमल। मल के वाचक शब्दों को अभिधान मल कहते हैं, यानी मल को बताने वाले जो शब्द है उसको अभिधान मल कहेंगे। यानी द्रव्य शब्द मल हो गए ना, वो अभिधान मल यानी शब्द मल, यानी मल के लिए जो वाचक शब्द है उसको अभिधान मल कहेंगे। तथा अर्थमल और अभिधान मल में उत्पन्न हुई बुद्धि को प्रत्यय मल कहते हैं। ये को क्या कहना चाहते हैं, जैसे अभी हम बाह्य मल की बात करते हैं, अभिधान यानी शब्द, उसका नाम यानी मल को बताने वाला नाम। जैसे अभी हमने ऊपर देखा पसीना लिखा है, पसीना की बात करते हैं, पसीना ये क्या है, अर्थमल है,
अभिधान।
क्योंकि वो एक्चुअली वो मल है ना, बाह्य है, द्रव्य मल है शरीर का, वो बाहरी जो कुछ है, तो कहते वो पसीना ये अर्थमल है। तो पसीना ये शब्द क्या है,
अभिधान,
वो अभिधान मल है। और ये जो पसीना नामक जो चीज है और पसीना नामक शब्द है, उनके द्वारा जो बुद्धि उत्पन्न हुई, जो ज्ञान हुआ, उसको प्रत्यय मल कहते हैं। जैसे हम नयों में लगते लगाते हैं ना, नयों में नहीं लगाते हम, ये जो पदार्थ है और उसको बताने वाला शब्द है और ज्ञान है, वहां पर भी अर्थ नये, शब्द नये और ज्ञान नये, तीन भेद लगाते हैं। आपको याद होगा अभी इसमें नए चक्र में सीखा था हमने। वैसे यहाँ मल, एक्चुअली जो मल है वो द्रव्य मल,
अर्थ अभिधान,
उसको बताने वाला जो शब्द है, उस मल का जो नाम है वो अभिधान मल, और वो पदार्थ और वो बताने वाला शब्द, इनके द्वारा जो बुद्धि उत्पन्न हुई, ज्ञान हुआ, वो प्रत्यय मल।
यानी अपने आत्मा को समझना छोड़कर वो मल को समझ रहे हैं, तो प्रत्यय मल हो गया। अथवा
नाम मल, स्थापना मल, द्रव्य मल और भाव मल के भेद से मल चार प्रकार का है। अथवा इसी प्रकार विवक्षा भेद से मल अनेक प्रकार का है। ये मलम गालयति शब्द से मल की बात चली। उस मल का जो गालन करे, विनाश करे, ध्वंस करे, उसे मंगल कहते हैं। अथवा मंग शब्द सुखवाची है, उसे जो लावे, प्राप्त करे, उसे मंगल कहते हैं। अब कहा भी है, ऊपर हम पढ़ेंगे 16 नंबर, मंग शब्दोयम उद्दिष्ट पुण्यार्थस्याभिधायक तल्लातित्युच्यते सद्भिर् मंगलम मंगलार्थिभिः। तत् लाते नहीं, उसको लाते, मंगम लाती। देखो यहाँ उसका अर्थ नीचे बता रहे, यह मंग शब्द पुण्य रूप अर्थ का प्रतिपादन करने वाला माना गया है। उस पुण्य को जो लाता है उसे मंगल के इच्छुक सत्पुरुष मंगल कहते हैं। मंग को सौख्य भी कहते हैं। नीचे लिखा है, देखो तिलोय पन्नति का एक उद्धरण दिया है 4 नंबर में, अहवा मंगम एटले सौखम लादी हु गेन्हेदी मंगलम तम्हा एदान कज्ज सिद्धिम मंगलत्थेदी कंथ कत्तारो। मंगम लाते ने सुख लाता है, पुण्य लाता है। ये पुण्य ने वो मंगल के अर्थ में ये पुण्य शब्द ले लिया यहाँ पर। अब 17 नंबर को पढ़ेंगे, पापम मलमिति प्रोक्तम उपचार समाश्रयात् तद्धि गालयति इत्युक्तम मंगलम पंडितैर्जनैः। यानी वो मल, यानी वो अलग अलग मल बताए। यहाँ पाप को भी मल कहते हैं, यहाँ क्या ना पुण्य, पुण्यमंगल यानी पुण्य को लाता है और मम यानी पाप को गलाता है, ऐसा भी उसका अर्थ कर सकते हैं। उसी का अर्थ नीचे हिंदी में पढ़ेंगे। उपचार से पाप को भी मल कहा है, इसलिए जो उसका गालन अर्थात नाश करता है उसे भी पंडित जन मंगल कहते हैं। अथवा कर्ता अर्थात किसी उद्दिष्ट कार्य को करने वाला, जिसके द्वारा या जिसके किए जाने पर कार्य की सिद्धि को प्राप्त होता है उसे भी मंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कर्ता जो है वो जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि को प्राप्त होता है उसे मंगल कहेंगे, या कर्ता जो है वो जिसके किए जाने पर कार्य की सिद्धि को प्राप्त होता है उसे मंगल कहते हैं। समझ में आई इसकी बात? ये डेफिनेशन थोड़ी अटपटी है। मंगल शब्द किसको कहना? उन पदार्थों को कहना। कौन से? कि जो कार्य करने वाला जो करता है वो जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि को प्राप्त होता है उसे मंगल करता है, मंगल कहते हैं, उस साधन को भी मंगल कहेंगे। या जिसके किए जाने पर कार्य की सिद्धि होती है उसको भी मंगल कहेंगे। इस तरह मंगल शब्द के अर्थ विषयक निश्चय के उत्पन्न करने के लिए मंगल शब्द की निरुक्ति कही गई है। छह बातें हमने देखे थे पेज नंबर 10 पर। धातु है, निक्षेप है, नय है, एकार्थ शब्द है, फिर निरुक्ति बताई।
निरुक्ति
अभी जो लास्ट है छठे नंबर पर अनुयोग। पेज 10 से ये बातें हम देख रहे थे। मंगल शब्द है नी, जो हमने छह प्रकार बताए ना, मंगल है, निमित्त है, हेतु है वगैरह वगैरह, जो छह बातें देखी थी उनके हर एक पर ये छह बातें लगानी। धातु, निक्षेप, नय, एकार्थवास, निरुक्ति और उसका ये अनुयोग। अब मंगल का अनुयोग कहते हैं अर्थात अनुयोग द्वारा मंगल का निरूपण करते हैं। अब ये अनुयोग द्वार भी छह हो गए। देखो विशेषार्थ, जिनेन्द्र कथित आगम का पूर्वापार संदर्भ मिलाते हुए, पूर्वापार संदर्भ ने पहले क्या बताया बाद में क्या, वो संदर्भ मिलाते हुए अनुकूल व्याख्यान करने को अनुयोग कहते हैं। ये अनुयोग की यहाँ परिभाषा बताई। फिर से, जिनेन्द्र कथित आगम का पूर्वापर संदर्भ मिलाते हुए अनुकूल व्याख्यान करने को अनुयोग कहते हैं। अथवा सूत्र का उसके वाच्य रूप विषय के साथ संबंध जोड़ने को अनुयोग कहते हैं। अथवा एक ही आगम कथित सूत्र के अनंत अर्थ होते हैं। दो चार पास नहीं बताए। एक ही आगम कथित सूत्र के अनंत अर्थ होते हैं, इसलिए सूत्र की अणु संज्ञा है। उसे सूक्ष्म रूप सूत्र का अर्थ रूप विस्तार के साथ संबंध के प्रतिपादन करने को अनुयोग कहते हैं। यानी सूत्र सूक्ष्म रूप होते हैं और उसका अर्थ तो बहुत विस्तार से होता है, तो ये जो सूत्र का अर्थ के जो विस्तार है उसके साथ संबंध बताने वाले को अनुयोग कहते हैं। यानी सूत्र जो है भाई मंगल कह दिया तो अभी उसका विस्तार से कथन करना, ये हुआ उसका अनुयोग। तो उसके लिए यहाँ बताते 18 नंबर में, किम कस्केण कथव केव चिरम कदि विधो य भावोति क्षयणी योगतारे ही सव भावानुगंतौ वा। यहाँ उसका पहले अर्थ देखते हैं। पदार्थ क्या है, किसका है, किसके द्वारा होता है, कहाँ पर होता है, कितने समय तक रहता है, कितने प्रकार का है, इस प्रकार इन छह अनियोग द्वारों से संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान करना चाहिए। देखो, हम तत्वार सूत्र में भी सूत्र देखा था ना, देखो निर्देश है ना, पदार्थ क्या है उसका निर्देश बताएं, नाम बताएंगे उसका, किसका है स्वामित्व बताएंगे, किसके द्वारा होता है साधन बताएंगे, कहाँ पर होता है उसका अधिकरण बताएंगे, कितने समय तक रहता है वो अधिकरण ये स्थिति हुई, और विधान उसके ने उससे कितने प्रकार का होता है, इस प्रकार छह अनियोग द्वारों से संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान करना चाहिए। ये तत्वार सूत्र में हमने देखा था, अध्याय के सातवें सूत्र में। देखो नीचे तीन नंबर का जो फुटनोट है उसको पढ़ेंगे। मूलाचार के 705 में लिखा है दुविहा प्ररूढ़ा, ये दो प्रकार की प्ररूढ़ा होती है, छप्पयाय नवहाय छप्पया इनमो, ये छह प्रकार से होती है, किम कस केन व कहिम केव चिरम कहवियो य भवे। तानी इमानी षड़ अनुयोग द्वारा ने, उसमें ये छह अनुयोग द्वार होते हैं, निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानता, ये तत्वार सूत्र अध्याय 1-7। तत्र किमिति अनुयोगे वस्तु स्वरूप कथनम निर्देश है, वस्तु स्वरूप का कथन करना निर्देश है, कस्य इति अनुयोगे स्वस्य इति अधिपत्य कथनम स्वामित्वम, ये कस्य पूछने वाले अनुयोग में वो किसका है, उसका अधिपति कौन है, उसका स्वामित्व बताया जाता है, केन इति प्रश्ने कारण निरूपणम साधनम, यानी किसने इस प्रश्न पर उसके कारण का कथन करना उसको साधन कहेंगे, कस्मिन इति अनुयोगे आधार प्रतिपादनम अधिकरणम, कस्मिन ने किसमें होता है या कहाँ पर होता है, यह आधार का प्रतिपादन करने को अधिकरण कहते हैं, कियत चिरमिति प्रश्ने काल प्ररूपणम स्थिति, यानी वो कितने काल के लिए है, कितने समय तक रहता है, तो इस प्रश्न में उसका उत्तर देना, वो काल की प्ररूपणा करना, उसको स्थिति कहते हैं, कति विधे इति अनुयोगे प्रकार कथनम विधानम, और वो कितने प्रकार का है इस अनुयोग में, उसके प्रकारों का कथन करना, उसको विधान कहते हैं। यानी अभी जो मंगल आदि छह बातें हैं उनमें हर एक में ये छह अनुयोग भी बताने, यानी छह छह बातें तो पहले बताने हैं, धातु निक्षेप नय एकार्थ फिर निरुक्ति और अनुयोग, और अनुयोग छह छह प्रकार के हो गए, छह प्रकार यानी निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान। अब ये जो छह है वो बताएंगे अनुयोग, तो पहले में पहले क्या है बताए, किम मंगल क्या है, सीधे जीव मंगल है, किंतु जीव को मंगल कहने से सभी जीव मंगल रूप नहीं हो जावेंगे, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा मंगल पर्याय से परिणत जीव को और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगल माना है। द्रव्यार्थिक नय ने वो मंगल पर्याय से परिणत जीव, यानी वो परिणत कभी होगी वो नहीं लेना है, वो द्रव्य लेना उसका, अभी जैसे हमने अभी द्रव्य निक्षेप में लगाया था ना, वैसा यहाँ लेना। इन्हें किसी भी जीव को मंगल नहीं कहा है, मंगल पर्याय से परिणत जीव, परंतु यहाँ जीव है वो सामान्य जीव द्रव्य लेना, जिसकी अनादि अनंत पर्याय में मंगल पर्याय होगी तो उसको द्रव्यार्थिक नय से उस जीव को मंगल कहा, और पर्यार्थिक नय से मंगल कब कहेंगे, उस पर्याय से परिणत जीव को लेंगे, या पर्याय को कहेंगे या पर्याय से परिणत जीव। हाँ,
केवल ज्ञानी पर्यायों को मंगल,
पर्यायों को मंगल कहा,
और वहाँ पर्याय से परिणत
परिणत जीव को लिया, वो द्रव्य को लिया, और यहाँ पर्यायिक नहीं की अपेक्षा केवल ज्ञान आदि पर्यायों को मंगल कहा। अब दूसरा प्रश्न क्या था, कस्य मंगल किसके होता है, तो द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा नित्यता को धारण करने वाले अर्थात सदा एक स्वरूप रहने वाले, और पर्यायिक नहीं की अपेक्षा उत्पाद व्यय स्वरूप जीव के मंगल होता है। किसके होता है, तो द्रव्यार्थिक अपेक्षा हम कहेंगे द्रव्य को होता है, पर्यार्थिक अपेक्षा से उत्पाद व्यय स्वरूप जीव के मंगल होता है। यहाँ पर जिस प्रकार कंबल देवदत्त का होते हुए भी देवदत्त से कंबल का भेद है, उस प्रकार जीव का मंगल रूप पर्याय से भेद नहीं है, क्योंकि यह अंगूठी स्वर्ण की है। यहाँ पर अभेद में अर्थात अंगूठी रूप पर्याय स्वर्ण से अभिन्न होने पर भी जिस प्रकार षष्ठी विभक्ति देखी जाती है, उसी प्रकार जीवस्य मंगलम, यहाँ पर भी अभेद में षष्ठी विभक्ति समझना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, मंगल किसका होता है, तो जीव का होता है, अंगूठी किसकी है, तो सोने की है, वैसा यहाँ षष्ठी विभक्ति लगाना है। समझ में आई बात, ये पुस्तक किसकी है, तो मेरी है, वो वाली बात नहीं लेना यहाँ पर। तो अभेद में वो षष्ठी विभक्ति लगाई कि जीवस्य मंगलम, ये मंगल किसका होता है, तो जीव का होता है, जैसे सोने की अंगूठी होती है। इस तरह संबंध कारक में अनेकांत समझना चाहिए। समझ में आई बात, संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति लगाते हैं हम। आप प्रश्न पूछते हैं ना, ये शर्त किसकी है, आपकी है कि भाई की है, यहाँ पर भी आपने षष्ठी विभक्ति लगाई, और वो कॉटन की है कि आपकी है, कॉटन की है, उसमें भी षष्ठी विभक्ति लगाई। ये अंगूठी मेरी है कहना, वहां पर भी षष्ठी लगाई, और ये सोने की यहाँ पर भी षष्ठी लगाई, इसमें अनेकांत हुआ, षष्ठी विभक्ति लगाने में अनेकांत हो, यही कहा थे। इस तरह संबंध कारक में अनेकांत समझना चाहिए, क्या मैं यही ना बात। ये किसकी है कहने में अनेकांत लगता है, अच्छा होता है, अर्थात उसी को समझा रहे, कहीं पर दो पदार्थों में भेद होने पर भी संबंध की विवक्षा से षष्ठी कारक होता है, और कहीं पर अभेद होने पर भी षष्ठी कारक का प्रयोग होता है। अब के नैने उसका साधन क्या है, किस कारण से मंगल उत्पन्न होता है, कहते जीव के औदयिक औपशमिक आदि भावों से मंगल उत्पन्न होता है।
औदयिक भावों से भी
ये पूजा भक्ति के ले लेंगे, इसमें पहले हमने देय लिया था ना, भगवान की भक्ति करना को भी मंगल कहा था, ये निकालो। पेज नंबर 31 पहली लाइन, जिनेन्द्र देव आदि की वंदना भाव स्तुति आदि में परिणत जीव को तत्परिणत नो आगम भाव मंगल कहते हैं। पेज 31 है ना, ये हमें ऐसा आश्चर्य लगता है ना, औदयिक भावों से मंगल उत्पन्न होता है। तो औदयिक औषमिक आदि भावों से मंगल उत्पन्न होता है। औषमिक आदि में वहां तो सम्यक की प्राप्ति वगैरह तो हो ही है, विशेषार्थ को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यद्यपि कर्मों के उपशम क्षय और क्षोपशम से सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति होती है, इसलिए उनसे मंगल की उत्पत्ति मानना तो ठीक है, परंतु औदयिक भाव से मंगल की उत्पत्ति नहीं बन सकती है, इसलिए यहाँ पर औदयिक आदि भाव से मंगल उत्पन्न होता है यह कहना किस प्रकार संभव है? इसका समाधान इस प्रकार समझना चाहिए, यद्यपि सभी औदयिक भाव मंगल की उत्पत्ति में कारण नहीं है। औदयिक भाव तो बहुत है ना, मिथ्या तो भी औदयिक भाव है। तो यद्यपि सभी औदयिक भाव मंगल की उत्पत्ति में कारण नहीं है, फिर भी पूजा भक्ति तथा अनुव्रत महाव्रत आदि प्रशस्त राग रूप औदयिक भाव, अनुव्रत महाव्रत को भी प्रशस्त राग कहा ना, ये प्रशस्त राग रूप औदयिक भाव मंगल का कारण है, इसलिए उसकी अपेक्षा से औदयिक भाव को भी मंगल की उत्पत्ति के कारणों में ग्रहण किया है। परंतु उसमें लिया ना मंगल के, उसमें तो ले लिया उसके, जैसे हमने उसमें निक्षेप डाला है ना हमने, उसको मंगल कौन से निक्षेप के कौन से नए से कह सकते हैं, उसको उन्होंने पहले बताया था। अब मंगल किस में उत्पन्न होता है, यानी कथ कहाँ उत्पन्न होता है, किसमें, सॉरी किसमें लिया, अधिकरण लिया था ना पहले, लिया ना निर्देश, पहला जो हमने किम यानी वो निर्देश था, किसका होता है ना स्वामित्व था, केन में उसका साधन था, अब यहाँ कथ यानी अधिकरण है, किसमें उत्पन्न होता है, तो जीव में मंगल उत्पन्न होता है। जिस प्रकार कुंडे से उसमें रखे हुए बेरों का भेद है, उस प्रकार जीव से मंगल पर्याय का भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सारे स्तंभ अर्थात वृक्ष के सार में स्तंभ है, यहाँ पर जिस तरह अभेद में भी सप्तमी विभक्ति की उपलब्धि होती है, जैसे षष्ठी में दो प्रकार बताए ना, अभी सप्तमी भी दो प्रकार बता रहे हैं। यानी जैसे हमने कहा ना टोकरी में फल रखे हैं, उसमें भी मे शब्द लगाया, और वृक्ष के सार में स्तंभ है, इसमें भी अभेद में सप्तमी लगाई। उसी प्रकार जीवे मंगलम, यहां पर भी अभेद में सप्तमी विभक्ति समझना चाहिए। जीव में ज्ञान है ऐसा है वो, जीव में मंगल है। अभी यहाँ पर्याय वाली बात नहीं है, जीव और उसके मंगल पर्याय, तो जीव में उत्पन्न हुई इसलिए वो जीव में अभेद में सब तुम्हें बताई। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि अधिकरण कारक के प्रयोग में भी अनेकांत है। अर्थात कहीं भेद में भी अधिकरण कारक होता है और कहीं अभेद में भी अधिकरण कारक होता है। अब केवचीरम पूछा था ना, कब तक मंगल रहता है, उसको स्थिति बताई थी। कि कब तक मंगल रहता है, नाना जीवों की अपेक्षा सर्वदा मंगल रहता है और एक जीव की अपेक्षा अनादि अनंत, सादि अनंत और सादि शांत, इस प्रकार मंगल के तीन भेद हो जाते हैं। शंका, मंगल में एक जीव की अपेक्षा अनादि अनंत पना कैसे बनता है, अर्थात एक जीव के अनादि काल से अनंत काल तक मंगल होता है, यह कैसे संभव है। समाधान, द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता से मंगल में अनादि अनंतपना बन जाता है। हमने निक्षेप में भी देखा था, वो द्रव्य मंगल होता है, द्रव्य निक्षेप लगाते हैं, वो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से प्रधानता से मंगल में अनादि अनंतपना बन जाता है। अर्थात द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता से जीव अनादि काल से अनंत काल तक सर्वथा एक स्वभाव स्थित है, अतएव मंगल में भी अनादि अनंतपना बन जाता है। इस तरह तो मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी जीव को मंगलपने की प्राप्ति हो जाएगी। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि यह इष्ट है। जीव को कहना इष्ट है परंतु उसके वो मिथ्यात्व तो पर्याय को नहीं कहीं लेना है, किंतु इससे मिथ्यात्व तो अविरति प्रमाद आदि को मंगलपना नहीं प्राप्त हो सकता क्योंकि उनमें जीवत्व नहीं पाया जाता। मंगल तो जीव ही है और वह जीव केवल ज्ञानादि अनंत धर्मात्मक है।
स्वभाव की अपेक्षा,
हाँ, आवृत अवस्था में अर्थात केवल ज्ञानावरण आदि कर्म बंधन की दशा में मंगलीभूत केवल ज्ञानादि का अभाव है, अर्थात उस अवस्था में ये सर्वथा नहीं पाए जाते हैं। यदि कोई ऐसा प्रश्न करे तो ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं है क्योंकि आवरियमान यानी जिसको आवरण करते हो, अर्थात जो कर्मों के द्वारा आवृत होते हैं, ऐसे केवल ज्ञान आदि के अभाव में केवल ज्ञान आदि को आवरण करने वाले कर्मों का सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकेगा। यानी आवरण करने वाला है तो वहां उसका जिसको आवरण किया उसका भी सद्भाव मानना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। दूसरे, जीव के लक्षण रूप ज्ञान और दर्शन के अभाव मानने पर लक्ष्य रूप जीव के अभाव की भी आपत्ति आ जाती है। यानी वो केवल ज्ञान उसका स्वभाव है, उसको यहाँ ले लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जीव का अभाव होता हो ऐसा नहीं देखा जाता, किंतु प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उसकी उपलब्धि होती है। यहाँ पर भस्म से ढकी हुई अग्नि के साथ व्यभिचार दोष भी नहीं आता क्योंकि ताप और प्रकाश की वहां पर भी उपलब्धि होती है। देखो उसी का विशेषार्थ करके समझा रहे, आवृत अवस्था में भी, आवृत कहते हैं हम छद्मस्थ,
ढका हुआ,
हाँ ढका हुआ, आवृत अवस्था में भी केवल ज्ञान आदि पाए जाते हैं क्योंकि वे जीव के गुण हैं। ये केवल ज्ञान आदि उसको गुण रूप ले लेना है यहाँ पर। यदि इस अवस्था में उनका अभाव माना जावे तो जीव का भी अभाव मानना पड़ेगा। इस अनुमान को ध्यान में रखकर शंकाकार का कहना है, इस तरह से तो भस्म से ढकी हुई अग्नि से व्यभिचार हो जाएगा, क्योंकि भस्माच्छादित अग्नि में अग्नि रूप द्रव्य का सद्भाव तो पाया जाता है, किंतु उसके धर्म रूप ताप और प्रकाश का सद्भाव नहीं पाया जाता। इस तरह हेतु विपक्ष में चला जाता है, अतएव वह व्यभिचरित हो जाता है। इस प्रकार शंकाकार का भस्म से ढकी हुई अग्नि के साथ व्यभिचार का दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि राख से ढकी हुई अग्नि में भी उसके गुणधर्म ताप और प्रकाश की उपलब्धि अनुमानादि प्रमाणों से बराबर सिद्ध होती है। अब इस पर फिर प्रश्न है, केवल ज्ञानादि तो पर्याय रूप है, इसलिए आवृत अवस्था में उनका सद्भाव नहीं बन सकता। समाधान, यह शंका भी ठीक नहीं है, क्योंकि कभी भी नहीं टूटने वाली ज्ञान संतान की अपेक्षा केवल ज्ञान के शक्ति रूप से सदा पाए जाने में कोई विरोध नहीं आता।
हम आपको याद होगा तो जयपुर में पंडित के नाम मुझे नहीं याद आ रहे, पाप और पुण्य लिखने वाले, उन्होंने मंगल लिया था, युवा मंगल, उसमें यही बताया था कि मिथ्या ज्ञान भी केवल ज्ञान का अंश है।
वो कभी नहीं टूटने वाली ज्ञान संतान को लिया,
उस समय हमें वो डाइजेस्ट नहीं हुआ था मुझे, और हम उनको मिलने गए थे लेकिन वो तब निकल रहे थे तो एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था।
देखो यहाँ उसका एक्सप्लेनेशन आगे के तीन लाइन में बताया। छद्मस अर्थात अल्प ज्ञानियों के ज्ञान और दर्शन अल्प होने मात्र से अमंगल नहीं हो सकते। वह मिथ्यात्व को नहीं लेना है, बस ज्ञान और दर्शन को लेना है।
मिथ्या ज्ञान
को, वो ज्ञान को मिथ्या नाम क्यों देते हैं? वो मिथ्यात्व की अपेक्षा देते हैं। अभी केवल वो अल्प ज्ञान इस रूप से ग्रहण करो उसको।
वहाँ पर बात हुई थी मिथ्यात्व या मिथ्या ज्ञान की, मुझे याद नहीं।
मिथ्या ज्ञान जो कह रहे हैं वो मिथ्या ज्ञान को मिथ्या ज्ञान मिथ्या नाम क्यों दिया? हम अपनी चर्चा कर रहे हैं, वो मिथ्यात्व के कारण, जैसे अभी हमने यहाँ बताया था ना, औदयिक भाव को भी वहाँ मंगल का कारण बताया था उन्होंने। हाँ। तो उसमें वो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद को नहीं लेना, उसमें सभी औदयिक भावों को नहीं लेना,
मंगल ही है।
अभी यहाँ जो ज्ञान, सिर्फ ज्ञान को लेना यहाँ पर, वो मिथ्या ज्ञान है। जो ज्ञान में तो क्या है, ज्ञान तो ज्ञान है, इसलिए उस ज्ञान रूप से उसको ग्रहण करना। देखो यहाँ क्या कहते हैं, छद्मस्त अपना जो 38 पेज चल रहा है, नीचे से 1, 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ, छद्मस्त अर्थात अल्प ज्ञानियों के, अल्प ज्ञानी लिया उसको, ज्ञान और दर्शन अल्प होने मात्र से अमंगल नहीं हो सकते।
हेलो,
भी रह गया आज। छद्मस्त अर्थात अल्प ज्ञानियों के ज्ञान और दर्शन अल्प होने मात्र से अमंगल नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान और दर्शन के एक देश में, वो बस ज्ञान और दर्शन का एक देश है, वो अल्प ज्ञान कहो उसको, मिथ्या ज्ञान मत कहो यहाँ पर। तो ज्ञान और दर्शन के एक देश में मंगलपने का अभाव होने पर ज्ञान और दर्शन के संपूर्ण अवयवों को भी अमंगलपना प्राप्त होगा। यानी वो छद्मस्य ने आवृत है, बस इतना ही लेना है, क्योंकि वो तो अंश है उसका, पूर्ण का वो एक देश अंश है। शंका, आवरण से युक्त जीवों के ज्ञान और दर्शन मंगलीभूत केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अवयव ही नहीं हो सकते? तो कहते ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन से भिन्न ज्ञान और दर्शन का सद्भाव नहीं पाया जाता है। तो शंकाकार फिर पूछते हैं, बताते हैं कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन से अतिरिक्त मति ज्ञान आदि ज्ञान और चक्षु दर्शन आदि दर्शन तो पाए जाते हैं, इनका अभाव कैसे किया जा सकता है? तो कहते उस ज्ञान और दर्शन संबंधी अवस्थाओं की मति ज्ञान आदि और शुद्ध दर्शन आदि नाना संज्ञाएं हैं, अर्थात ज्ञान गुण की अवस्था विशेष का नाम मत्यादि और दर्शन गुण की अवस्था विशेष का नाम चक्षु दर्शन आदि है। यथार्थ में इन सब अवस्थाओं में रहने वाले ज्ञान और दर्शन एक ही है। फिर शंका, केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अंकुर रूप छद्मस्थों के ज्ञान और दर्शन को मंगलपना प्राप्त होने पर मिथ्या दृष्टि जीव भी मंगल संज्ञा को प्राप्त होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव में भी वे अंकुर विद्यमान है। वहां कहते हैं यदि ऐसा है तो भले ही मिथ्या दृष्टि जीव को ज्ञान और दर्शन रूप से मंगलपना प्राप्त हो, है ना? किस अपेक्षा से मंगलपना है? ज्ञान और दर्शन रूप से मंगलपना प्राप्त हो, किंतु इतने से ही मिथ्यात्व अविरति आदि को मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता। ये फिर उन्होंने दोबारा रिपीट किया, मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञान दर्शन को मंगल कहो, उसके मिथ्यात्व को अविरति को प्रमाद को मंगल मत कहो। ये कहते हैं यहाँ ज्ञान दर्शन रूप से यानी उसकी अपेक्षा से उसको मंगलपना है। फिर शंका पूछते हैं उसी बात पर कि मिथ्या दृष्टि जीव सुगति को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि सम्य दर्शन के बिना मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान में समीचीनता नहीं पाई जाती। यानी मिथ्या दृष्टि है तो उसका ज्ञान भी समीचीन नहीं, उसमें भी अनध्यवसाय संशय विपरीत तो बना रहता है, तो उसका प्रश्न है। तथा समीचीनते के बिना उन्हें सुगति नहीं मिल सकती, फिर मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन को मंगलपना कैसे है? ये प्रश्न पूछा गया। कहते ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप्त के स्वरूप को जानने वाले छद्मस्थों के ज्ञान और दर्शन को केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अवयव रूप से निश्चय करने वाले और आवरण रहित अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन रूप शक्ति से युक्त आत्मा का स्मरण करने वाले सम्यक दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन में जिस प्रकार पाप का क्षयकारीपना पाया जाता है, उसी प्रकार देखो क्या कहना चाहते हैं। सम्यक दृष्टि का ज्ञान कैसा है? जो छद्मस्थ सम्यक दृष्टि है, आप्त का स्वरूप जानने वाला है और वो केवल ज्ञान केवल दर्शन के अवयव रूप से निश्चय करने वाला है और आवरण रहित अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन रूप शक्ति से युक्त आत्मा का स्मरण करने वाले, ऐसे जो सम्य दृष्टियों का ज्ञान दर्शन में पाप का क्षयकारी पाना पाया जाता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन में भी पाप का क्षयकारी पना पाया जाता है। इसलिए मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन को भी मंगलपना होने में विरोध नहीं है। अथवा नो आगम भावी द्रव्य मंगल की अपेक्षा मंगल अनादि अनंत है। यानी मिथ्या दृष्टि को कैसा, अभी नो आगम क्यों कहा? नो आगम के तीन भेद कहे थे ना हमने, ज्ञायक शरीर भावी या भव्य और फिर तद व्यतिरिक्त। उसमें जो ये नो आगम भावी वाला जो है भव्य नो आगम द्रव्य मंगल, उसकी अपेक्षा मंगल अनादि अनंत है। विशेषार्थ, जो आत्मा वर्तमान में मंगल पर्याय से युक्त तो नहीं है किंतु भविष्य में मंगल पर्याय से युक्त होगा, उसके शक्ति की अपेक्षा अनादि अनंत मंगलपना बन जाता है। अब ये सादी, पहले अनादि अनंत उन्होंने सिद्ध किया, अब सादी आनंद कैसे हो सकता है? रत्नत्रय को धारण करने करके कभी भी नष्ट नहीं होने वाले रत्नत्रय के द्वारा ही प्राप्त हुए सिद्ध के स्वरूप की अपेक्षा नैगम नय से मंगल सादी अनंत है। यहाँ क्या कहते हैं, सम्य दर्शन है, रत्नत्रय उत्पन्न हुआ और वह भी टिका रहा और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ, तो वो जीव मंगलपना प्राप्त किया और ये मंगलपना उसको अनंत काल तक रहेगा, उस अपेक्षा से उसको सादी अनंत कह दिया। नैगम ने ना दोनों पर्यायों को लेते हुए द्रव्य की बात है, उसको नैगम कहा, न एकम नैगम। विशेषार्थ, रत्नत्रय की प्राप्ति से सादीपना और रत्नत्रय की प्राप्ति के अनंतर सिद्ध स्वरूप की जो प्राप्ति हुई है उसको कभी अंत आने वाला नहीं है। इस तरह इन दोनों धर्मों को ही विषय करने वाले न एकम गमह नैगमह, नैगम नय की अपेक्षा मंगल सादी अनंत है। अब सम्य दर्शन की अपेक्षा मंगल सादी शांत समझना चाहिए, यह ऐसा लिया है जो सादी शांत सम्यक की अपेक्षा बात है, यानी सम्यक छूटकर फिर मिथ्यात्व में जाला जाता है, जो उसकी अपेक्षा से बता रहे हैं कि उसका जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 66 सागर प्रमाण है, क्योंकि वो फिर मिथ्यात्व में लाना है ना, इसलिए कुछ कम लिखा। पूरे 66 सागर लिखते तो शायक होकर उसको सम्यक तो अनादि अनंत सादी अनंत बन जाता। अब कितने प्रकार का है विधानतः का विधान, तो मंगल कितने प्रकार का है? मंगल सामान्य की अपेक्षा मंगल एक प्रकार का है, मुख्य और गौण के भेद से दो प्रकार का है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के भेद से तीन प्रकार का है। छत्तारी भी मंगल कहते ना, इसे कहते धर्म सिद्ध साधु और अरहंत के भेद से चार प्रकार का है, हम उसको अरहंत सिद्ध साधु और धर्म कहेंगे, केवली प्रणित धर्म। ज्ञान दर्शन और तीन गुप्ति के भेद से पांच प्रकार का है, अथवा जिनेन्द्र देव को नमस्कार हो इत्यादि रूप से अनेक प्रकार का है, यानी उसमें जितने हम अपेक्षा लगाए उतने भेद हो सकते हैं, अथवा मंगल के विषय में छह अधिकारों द्वारा दंडकों का कथन करना चाहिए, वे इस प्रकार है, मंगल, मंगलकर्ता, मंगल करणीय, मंगल उपाय, मंगल भेद और मंगल फल। अब इन छह अधिकारों का अर्थ कहते हैं, ये पहले में पहले उनके अनुयोग बताए छह, अब उसके बदले यहाँ छह अधिकार के द्वारा दंडकों का दंडक यानी उसकी लिस्ट बताएंगे, वो क्या है, मंगल, मंगलकर्ता, मंगल करणीय, मंगल उपाय, मंगल भेद और मंगल फल। अब इन छह अधिकारों का अर्थ कहते हैं, मंगल का अर्थ तो पहले कहा जा चुका है, 14 विद्या स्थानों के पारगामी आचार्य परमेष्ठी मंगल करता है, 14 विद्या स्थान यानी 14 पूर्व, आगे आया क्या 49-50 नंबर डाल के रखा है पेज नंबर, मैं 14 विद्यास्थानों के पारंगत, ये भी 50 पेज पर आई थी बात। चतुर्दश विद्यास्थान पारग 49 पर प्राकृत में है और 50 पेज और पहली लाइन है। यानी द्वादशांग का कहते विद्यास्थान यानी द्वादशांग या 14 पूर्व को लेना, क्योंकि 11 अंग का धारी अलग से लिया यहाँ पर। यानी वाह वाह कहके वो 11 अंगों की बात है या पूर्व 14 पूर्व लेना। उसमें 14 पूर्व कहने से द्वादशांग सब आ गए उसके अंदर। तो 14 विद्या स्थानों के पारगामी आचार्य परमेष्ठी मंगल करता है, भव्यजन मंगल करने योग्य है। मंगल करनी है बताए ना, रत्नत्रय की साधक सामग्री मंगल का उपाय है। एक प्रकार का मंगल, दो प्रकार का मंगल इत्यादि रूप से मंगल के भेद पहले कहे आए। अभी हमने बताया ना, एक अपेक्षा, दो अपेक्षा, तीन अपेक्षा। अभी उसका फल क्या है मंगल का? अभ्युदय और मोक्ष सुख मंगल का फल है। अर्थात जितने प्रमाण में यह जीव मंगल के साधन मिलाता है, उतने ही प्रमाण में उससे जो यथायोग्य अभ्युदय और निःश्रेय सुख मिलता है, वही उसके मंगल का फल है। वह मंगल ग्रंथ के आदि, मध्य और अंत में कहना चाहिए। ये कहना चाहिए उसके लिए 19 नंबर की गाथा बताई है, आदि अवसान मच्छे पन्नत्त मंगलम जिनेन्देहिं तोकय मंगल विनयो इनमो सुक्तम पवक्खामि। जिनेन्द्र देव ने आदि, अंत और मध्य में मंगल करने का विधान किया है, अतः मंगल विनय को करके मैं इस सूत्र का वर्णन करता हूँ। यही रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सो वाणी मस्तकनं सदा देता।